दीक्षांत और माही ने सबको चाय और टोस्ट सर्व किया और उसके बाद सब लोग अमर के इर्द गिर्द बैठ चुके थे। अमर ने जैसे ही उठकर बैठने की कोशिश की, समर्थ और दीक्षांत ने सहारा देकर उसे आराम से बैठाया। समर्थ ने उसके सर के पीछे पिलो लगाते हुए कहा, वैसे मिस ब्यूटीफुल कहाँ है? दीक्षांत ने भी उसका साथ देते हुए कहा, तुम तो बोल रहे थे तुम्हें भाभी जान मिल गई है, फिर वो है कहाँ? दीक्षांत की बात सुनकर बाकी सब भी शांत हो गए और सब एक टक अमर को घूरने लगे। अमर ने हड़बड़ाकर कहा, सॉरी, मैंने आप लोगों से झूठ बोला, पर जानवी अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। उसने कहा है कि उसे हमारा घर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है। पर मैं उसे कभी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि शायद मैं ही उसका ख्याल नहीं रख पाया। आप लोग चिंता मत कीजिए मेरे लिए, शायद कोई और बनी होगी। उसकी ये बात सुनकर पूरा रावत परिवार सदमे में जा चुका था। रजत जी जल्दी से अमर के सामने आए और उसे कंधों से पकड़कर हिलाते हुए बोले, तो होश में तो है? क्या बोल रहा है जानवी के बारे में? जानवी ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, इतने दिन बताएं उसके साथ, मुझे पता है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। कल्याण सिंह ने भी गुस्से में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। मैं जानवी को खुद जाकर मिलना चाहता हूँ, अगर वो मेरे सामने ये सब कुछ बोलेगी तभी मैं मंजूर करूँगा तुम्हारी दूसरी शादी को करना। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से उसे मासूम से बच्चे का दिल दुख किया होगा। समर्थ ने भी रजत और कल्याण सिंह का साथ देते हुए कहा, हाँ भाई, दादू और पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मिस ब्यूटीफुल कभी ऐसा नहीं कर सकती हैं, मुझे आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। त्रिशा, जो अब तक एक कोने में शांत खड़ी थी, वो रोने का नाटक करते हुए वहां जाकर बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, उसके मासूम चेहरे के पीछे बहुत ही गंदा चेहरा छुपा हुआ है। वो बहुत चालाक लड़की है, उसने मुझे किसी और से प्रेग्नेंट करवाया, और आप चाहें तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट तक देख सकते हैं। मुझे उसने पता नहीं किसका स्पर्म दे दिया था और डॉक्टर से जानबूझकर मुझे इस वक्त प्रेग्नेंट करवाया जब मैं अमर जी से शादी कर रही थी, और उसके बाद उसने मुझे ये सब कहा कि मेरी रेप्यूटेशन चली जाएगी अगर मैं किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट होते हुए किसी और से शादी करूँगी, जिस वजह से मैं शादी छोड़कर भाग गई और आप सब लोगों के दिलों में मेरे लिए नफरत पैदा हो गई। पर मुझे पता है उसकी मासूमियत का असर इतनी जल्दी आप लोगों के ऊपर से उतरेगा नहीं, पर जब उतर जाएगा तब आपको मेरी बातें जरूर याद आएंगी। इतना बोलते हुए त्रिशा ने अपने मगरमच्छ वाले आंसू पोंछे और नीचे गर्दन किए तिरछी नजरों से अमर की तरफ देखने लगी। उसे यहां सबसे ज्यादा अमर के रिएक्शन से मतलब था। अमर ने त्रिशा का साथ देते हुए कहा, त्रिशा बिल्कुल सही बोल रही है, मैंने देखी इसकी मेडिकल रिपोर्ट, इसका किसी आदमी के साथ संबंध नहीं था, इसे जानबूझकर किसी ने प्रेग्नेंट करवाया था, पर मैं अब तक वो अपना राइवल समझ रहा था कि किसी राइवल ने ये सब कुछ करवाया होगा, पर अब मुझे पता चला कि जानवी को मैं पहले अच्छा लग रहा था, उसे हमारा घर अच्छा लग रहा था, हमारी प्रॉपर्टी अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने जैसे ही देखा कि इस प्रॉपर्टी पर दीक्षांत का भी हक है, समर्थ का भी हक है, मेरा तो सिर्फ 20% है, शायद इसी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया। खैर, जो बीत चुका है हम उसे नहीं बदल सकते हैं, आप डॉक्टर से बात कीजिए कब तक वो मुझे यहाँ से छुट्टी दे देंगे, फिर हम घर चलते हैं। घर जाकर ठंडे दिमाग से आप सब लोग सोच लेना, उसके बाद हम जानवी को खुद बुलाएंगे और वो सामने से आकर आप लोगों से कन्फेशन भी कर लेगी। कुछ देर की छुट्टी के बाद रजत जी गुस्से से वहां से बाहर चले गए बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। कल्याण सिंह जी की आंखों में आंसू थे, इतने दिनों बाद मिली उनकी छोटी सी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जानवी ने रो रो के अपनी आंखें सुझा रखी थी। उसके सामने अद्वैत बैठा था और उसके गालों पर आए आंसुओं को टिश्यू से पोंछते हुए बोल रहा था, तुम्हारे लिए मुलायम गाल बार बार हाथ रगड़ने की वजह से छिल गए हैं, तुम्हें टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, वहां रखा है। इस बार अगर मैंने ये छिले हुए गाल देखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं महबूबा, पर मेरे गुस्से से तुम अभी वाकिफ नहीं हो, और उम्मीद रखो कि हमेशा मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार से ही समझाऊं, मुझे तुम पर गुस्सा करने की नौबत ना आए। जानवी ने सहमते हुए उसकी तरफ देखा। अद्वैत ने एक स्माइल के साथ उसका सर सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा, अच्छे बच्चों की तरह वो खाना खाना है, कोई नखरे नहीं चलेंगे। जानवी को ना चाहते हुए भी हाँ में सर हिलाना पड़ा, उसे बार बार अमर याद आ रहा था। अमर भी बिल्कुल अद्वैत की तरह ही उसकी केयर करता था, पर जानवी को अमर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शायद अमर से पहले अगर अद्वैत मिला होता तो आज जानवी को अद्वैत से भी उतना ही प्यार होता जितना अमर से है, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी छोटी से छोटी चीजों का भी ख्याल रख रहा था। थोड़ी देर बाद अद्वैत हाथों में खाने की प्लेट लेकर आया और फिर अपने हाथों से ही जानवी को जबरदस्ती खाना खिलाने लगा। जानवी को ना चाहते हुए भी वो खाना पड़ा। उसकी आंखों से अभी मोती जैसे आंसू बरस रहे थे, जिन्हें बार बार अद्वैत टिश्यू पेपर से क्लीन कर रहा था। अद्वैत को पता था इतनी जल्दी जानवी रोना नहीं छोड़ेगी, इसीलिए वो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था।